તારીખ 24/10/1995 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 767, 768 અને 140 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 633.
પાત્રતા વિશેનો બોલ છે. પાત્રતા વિના ગુરુગમ મળે નહીં, અને ગુરુગમ વિના સત્ય સમજાતું નથી. શું કહેવું છે? ગુરુ જે વાત કહેવા માગે છે એની ગમ પડવી, ગુરુની વાતની ગમ પડવી એને ગુરુગમ કહે છે. પાત્રતા વિના ગુરુગમ મિલે નહીં, ઓર ગુરુગમ કે વિના સત્ય સમજ મેં નહીં આતા. તો ગુરુગમ માને ક્યા? ગુરુગમ માને ગુરુ જો આત્મહિત કી વાત કહે રહે હૈ, જ્ઞાન ગમ્ય હોના, ઉસ સમજ મેં ગમ્ય હોના, ઉસકો કહેતે હૈ ગુરુગમ. જૈસે કે ગુરુ કી બાત તો અનેક પ્રકાર કી ગુરુ કે મુખ સે આતી હૈ. ઉસમે યે બાત મેરે લિયે આઈ, ઇસલિયે ઇસ બાત કા મુજે અમલીકરણ કરના હૈ. યે બાત મેરે લિયે આઈ, વો ધ્યાન જાય, ઉસ પર લક્ષ્ય જાય, ઓર જો ભી ઉસકા અમલ કરના હો વો કર લે. એસા કબ હોતા હૈ કે જબ ઉસી કે યોગ્ય પાત્રતા હોતી હૈ તબ હોતા હૈ. બિના પાત્રતા એસે ગુરુગમ નહીં મિલતી. પારમાર્થિક રહસ્ય ગુરુ કી બાત મેં જો હોતા હૈ, વો સ્પષ્ટ સમજ મેં આયે હૈ, તબ ભી કહેને મેં આતા હૈ કે ઉસકો ગુરુગમ મિલે. ગુરુગમ કા અર્થઘટન થોડા વિશાલ હૈ. તો અપની ભૂમિકા કી બાત ગ્રહણ કર લે. ગુરુવાણી છે તો કહેતે હૈ કે ઉનકો ગુરુગમ હૈ, ક્યોંકિ ઉતની પાત્રતા હૈ. ઓર પાત્રતા નહીં હોતી ઓર ગુરુગમ નહીં મિલતી તો પરમાર્થ કી બાત કિતની ભી સ્પષ્ટ, પારમાર્થિક રહસ્ય કિતને ભી સ્પષ્ટ કહે તો ભી વો ઉપર સે ચલી જાય, લક્ષ્ય નહીં જાય, ઉસ પર વજન નહીં જાય. એસા બનતા હૈ. કૃપાલુ દેવને એક ઇસ વિષય મેં બહુત અચ્છા માર્ગદર્શન દિયા હૈ કે જિસને અજ્ઞાનકિતપણે સે સત્સંગ કી ઉપાસના નહીં કી હો, ઉનકો એ ગુરુગમ નહીં મિલતી. યાને પરમાર્થ કી બાત કિતની ભી સ્પષ્ટ કહી હો યા લિખી હો તો ભી ધ્યાન નહીં જાતા. क्योंकि अज्ञानचितपने से सत्संग की उपासना नहीं होती है। हाँ, पात्रता नहीं है तो दर्शन वो तीव्र है, दर्शन वो मंद है तो पात्रता है, और दर्शन वो तीव्र है तो पात्रता नहीं है। ठीक बात है, पात्रता में तो अकेला दर्शन मोह की बात नहीं है, दर्शन मोह भी तीव्र है, ज्ञान में भी निर्मलता नहीं होने से सूझबूझ नहीं है, और कषाय रस की भी तीव्रता है। तीनों बात अपात्रता में जाता है, और तीनों में अनुकूल परिस्थिति होने से पात्रता बोली जाती है। एक शब्द में पात्रता कहते हैं, विस्तार करें तो तीनों मुख्य गुण पर उसका असर जाता है, होता है। तीनों का इंटरकनेक्शन है ही, एक साथ ही होता है। तीनों गुण में पात्रता आती है तो तीनों में फर्क पड़ता है, पात्रता नहीं है तो तीनों में फर्क नहीं पड़ता है। कषाय रस नहीं और मैंपना में भी, अगर कषाय रस मंद है तो मैंपना भी मंद होना चाहिए, मैंपने में भी मंद, मैंपने में भी मंदता आनी चाहिए। गुरुगम के बिना सत्य समझ में नहीं आता। सत्य मैंने क्या, कि अपने हित की बात समझ में नहीं आती, बाकी तो सूक्ष्म में तो धारणा कितनी भी होती है, लेकिन मेरे हित की बात यह है वो समझ में नहीं आती, तो उसको सत्य समझ में नहीं आया। कहा है कि अनंत काल में सत्पुरुष की सेवा नहीं की। लो कौन बोलते, गुरुदेव बोलते हैं। लोग ऐसे समझते थे कि गुरुदेव निमित्त की बात को उड़ा देते थे, मानते नहीं थे, ऐसे नहीं बात है। क्या कहा, कहा है मैंने शास्त्र में कहा है, और समयसार दिखाओ तो समयसार की चौथी गाथा में वो बात है। हमेशा के चौथे गाथा में ये बात है, और ये प्रवचन चल रहा है कार्तिक अनुपरीक्षा, ये वचनामृत कार्तिक के अनुपरीक्षा के बहुत पुराना शास्त्र है। कार्तिक स्वामी बहुत पुराने आचार्य हुए हमारे, इनका जो ग्रंथ है उसमें से जो प्रवचन चला उसमें से लिया है। कहा है कि अनंत काल में सतपुरुष की सेवा नहीं की। तो सभी ज्ञानी एक ही बात करेंगे, अनंत ज्ञानियों का एक अभिप्राय होता है, एक मत होता है, और एक अज्ञानी का अनेक मत होता है। कभी क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा। कहा है कि अनंत काल में सतपुरुष की सेवा नहीं की, इसका अर्थ यह है कि अपनी पात्रता नहीं थी इसलिए निमित्त का आरोप, निमित्त पर निमित्त का आरोप भी नहीं आया। वो तो निमित्त प्रधानता से उपादान की बात किया है, पात्रता नहीं थी वो बात है। सतपुरुष की सेवा नहीं की इसका मतलब क्या, कि सेवा करने की पात्रता नहीं थी, वरना सेवा किए बिना रहे नहीं, पात्रता नहीं थी, वो कहने का मतलब है। सत्पुरुष की पहचान हो और उपकार बुद्धि नहीं आए ऐसा बने ही नहीं, कैसे बन सकता है? उपकार बुद्धि हो तो पात्रता आए बिना रहे। समय सा रहे हैं तो इसमें से परंतु निर्मल भेद ज्ञान रूप प्रकाश से स्पष्ट भिन्न देखने में आए ऐसा मात्र यह भिन्न आत्मा का एकत्वपना जो सदा प्रकट पने से अंतरंग में प्रकाशमान है तो भी कषाय चक्र के साथ एक रूप जैसे करने में आया होने से अत्यंत तिरोभूत हो गया है। वह अपने में अनात्मग्नपणा होने से एक तो उस प्रकार से अपने से आत्मग्नपणा नहीं होने से एक बात यानी स्वयं अपने आत्मा को एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं जानता होने से और दूसरे आत्मा को जानने वाले की संगति और सेवा नहीं की होने से अपना तो आत्मज्ञान नहीं किया और जिसको आत्मज्ञान है उसकी संगति भी नहीं की तो संगति करके हाइफन किया है सेवा नहीं की ऐसा लिखा है। हाँ चौथी गाथा समय सात चौथी गाथा हाँ संगति सेवा तो प्रत्यक्ष में ही हो सकती है परोक्ष पाने की कहाँ से। पूर्वे कभी सुनने में आया नहीं परिचय में आया नहीं अनुभव में आया नहीं इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्वपना सुलभ नहीं है। वो बात अमृतचंद्र आचार्य ने भी 1000 साल पहले वो बात लिखी है कि तुम तो अपने आप से तो आत्मा जान सके ऐसी तेरी कोई स्थिति है ही नहीं। क्यों? कि तुम्हारा जो कषाय चक्र है उसमें एक उतना तेरा एकत्व चल रहा है कि तेरा भिन्न आत्मा का जो स्वरूप से एकत्व है वो तो अत्यंत शिरोभूत हो गया है। तो तेरा कोई बूता नहीं है कि तू आत्मज्ञान कर सके। तो आत्मज्ञान तो तेरे में है नहीं इस परिस्थिति में और है कर सके ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। अब बात रही कि दूसरे आत्मा का जो जानने वाला है उसकी संगति तो कर उसकी सेवा कर तो आत्मज्ञान हो सकता है। उसकी संगति और सेवा नहीं करेगा तो आत्मज्ञान होएगा नहीं। वो संगति के साथ सेवा क्यों लिया समझे? परेशम आत्मज्ञानम अनुपासनाच न कदाचित अपि श्रुत पूर्वम। वहां तो संस्कृत में अनुपासना शब्द लिया है उसमें से जयचंद जी ने ये अर्थ किया है पंडित जयचंद जी छावड़ा जयपुर में हो गया उन्होंने ये बात किया है कि तुमने बीजा आत्मज्ञान आत्मज्ञानी वह है आत्मज्ञानाम आत्मज्ञान जिसको है उसकी तुमने उपासना नहीं की। उपासना में सेवा और संगति दोनों बात लिया है जयचंद जी ने। तो संगति में तो एक बाह्य संयोग का ही अर्थ होता है। उपासना में तो सेवा आती है, बहुमान होवे तो ही उपासना होवे, बहुमान नहीं होवे तो उपासना नहीं हो सके। संस्कृत में उपासना अनुपासना ऐसा भी है, उपासना नहीं की। बहुमान आता है तो इसका उपदेश परिणमित होता है सेवा में, भक्ति प्रीति भक्ति सत्पुरुष के प्रति, इनके वचन के प्रति और इनके वचन के आशय के प्रति। प्रीति भक्ति हुए बिना आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। ये क्रम पड़ता है, जब सत्पुरुष के प्रति प्रीति भक्ति होती है तो इनके वचन के प्रति भी प्रीति भक्ति होती है और इनके वचन के आशय के प्रति भी प्रीति भक्ति होती ही है। कभी कभी स्पष्टीकरण देना आवश्यक इसलिए पड़ता है, एक में तो तीन आ ही जाता है, कभी किसी को गड़बड़ होती है कि गुरुदेव के प्रति हमारी भक्ति तो बहुत है लेकिन कुछ बात हमको अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती, कुछ एक बात में हमको ऐसा लगता है। बाकी हमको गुरुदेव के प्रति कोई बाधा नहीं, हमको भक्ति है लेकिन कुछ एक बात हमको अप्रिय लगती है, प्रिय नहीं लगती है। ऐसा हो सकता ऐसा नहीं होता, और कोई भी बात कही हो वो शिष्य के कल्याण के अर्थ ही कही है। तो खुद निष्प्रो होते हैं जो बात करते हैं, वो तो अगले के कल्याण के अर्थ करते हैं, दूसरा तो कोई आशय तो होता नहीं। जिसकी निष्कारण करुणा अपार हो उसके प्रति बहुमान, उसके प्रति उपकार, उसके प्रति संगति सेवा नहीं हो तो क्या हो, क्या होता है।
उपासना
में समझ आता है, उपासना में कोई चीज बाकी नहीं होती। वो तो संस्कृत शब्द है, वो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट शब्द है। फिर जो ज्ञानी है तो उनका सादा अर्थ सब लोग को समझ में आए ऐसा बना देते हैं, मूल शब्द तो एकदम फिट होता है। अनंत काल में सत्पुरुष की सेवा नहीं की, इसका अर्थ यह है कि अपनी पात्रता नहीं थी। सेवा क्यों नहीं किया, पात्रता नहीं थी इसलिए नहीं किया। क्यों बहुमान नहीं आया, कि पात्रता नहीं थी, यही कारण है। इसलिए निमित्त का आरोप भी नहीं आया कि उसको निमित्त मिला है, वो भी कहना कठिन है, मुश्किल है कि उसको गुरु मिला है। कहने योग अयोग, योग है वही अयोग के बराबर हो जाएगा। आत्मकल्याण के वचन पर ध्यान नहीं जाता, इसका कारण क्या, बात आत्म कल्याण की आती है, हमारे कल्याण की बात आती है, और हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? कई सालों तक ध्यान क्यों नहीं जाता है? पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो ध्यान जाएगा। वो बेंसर के पत्र में आया है कि हमको समकित चाहिए, हमको सम्यक दे दो, सम्यक समकित का प्राप्ति करा दो। बार बार हम मांग करते हैं ज्ञानी गुरु के पास कि हमको समकित समकित दे दो, ने समकित का दान दे दो, लेकिन समकित देंगे तो रखेंगे कहाँ? जैसे किस दरिद्र ने मांगा कि हमको 50 लाख का हीरे का हार दे दो, तो दे दिया चलो, लेकिन तुम रखोगे कहाँ? अगर तुम्हारे पास रखने के लिए तिजोरी नहीं है तो कोई उठा जाएगा, तुम्हारी झोंपड़ी में रखने का जगह तो व्यवस्था तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिसके घर में इतना मूल्यवान आभूषण हो उसका रखने की भी व्यवस्था होती है, पहले रखने की व्यवस्था नहीं है और आभूषण चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो रखने के लायक नहीं, उसके पास रहेगा नहीं चीज। ऐसा हमको समकित चाहिए, हमको समकित चाहिए, लेकिन तुम रखोगे कहाँ? ये कोई मामूली चीज तो नहीं है, बहुत कीमती चीज है, कहाँ रखोगे? बिना पात्रता वो चीज रहने वाली नहीं है। तो बहुत शैली मार्मिक किया है, मार्मिक शैली से बात किया है। रुचि पूर्वक सत सुना नहीं, संगति नहीं किया, इसका मतलब क्या? कि रुचि से समागम में सत श्रवण किया नहीं, श्रवण किया लेकिन रुचि से श्रवण नहीं किया। श्रवण किया, धारणा किया, लेकिन आत्मरुचि पूर्वक वो बात नहीं किया है। जरूरत लगी हो और सुनने को बैठे तो काम हो जाए। जब श्री गुरु ने सत को सुनाया, सत में मैंने आत्मस्वरूप को सुनाया, उस वक्त तुम्हारी रुचि में क्या हुआ? कितना रुचा वो बात? रुचि तो ऐसी होनी चाहिए कि आत्मस्वरूप की बात आए तो अंदर में झनझनाटी हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसी रुचि से सुने, उसका नाम किया कि परिचय किया, संगति किया और परिचय किया। लेकिन ऐसी रुचि से सुना नहीं, इस प्रकार से परिचय किया नहीं और सेवा भी नहीं किया, फिर सेवा करने का भाव तो आएगा कहां से? उनको तो सेवा करने का भाव आएगा। सेवा मैंने कहा सर्वार्पण बुद्धि से सत्समागम हो, सर्वार्पण आ जाए। अपनी पात्रता बिना सत निमित्त मिला, अपनी पात्रता बिना सत निमित्त मिला होने पर भी वह निमित्त कारण भी कहलाया नहीं, निमित्त कारण भी उसको नहीं कहते। पात्रता नहीं तो उसको बार में द्रव्य से समागम हुआ है, भाव से समागम नहीं हुआ। द्रव्य रुचि जीवड़ा, भाव रुचिहीन, आनंद गंजी ने गायन। द्रव्य रुचि तो है, भाव रुचि, द्रव्य रुचि है, इसलिए बाहर में समागम करता है, अंदर में रुचि नहीं है भाव में। और स्वतंत्रता समझे तो साचा की साचा ज्ञान हो। स्वतंत्रता क्या है उसमें, कि गुरु मेरा काम कर देगा वो बात नहीं है, और ऐसा नहीं लेना चाहिए कि क्या करूं मेरे में तो कुछ नहीं, आप कुछ कर दो ना मेरा, मेहरबानी करके मेरा काम कर दो, मैं तो बहुत पामर हूं, मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, आप मेरा थोड़ा काम कर दो। घर में मेहमान को भी काम सौंपा नहीं जाता, तो महापुरुष को काम सौंपा जाता है कि मेरा काम आप कर दो। ये तो सेवा करने के बजाय सेवा कराने की बात हो गई ना। सेवा करने तो एक बाजू रह गई, लेकिन मेरी सेवा आप करो। आप, आपको मेरे पर बहुत प्रेम है तो मेरा इतना काम नहीं करोगे आप। पात्रता हुए बिना काम होगा? हाँ है तो करुणा के सागर, लेकिन करने करने वाले हैं नहीं। वो तो निष्प्रता से उपदेश देते हैं, इसलिए करुणा सागर कहते हैं। जगत के दुखी जीवों पर करुणा आई, उसका दुख मिटाने के लिए उपदेश दिया। और 768 है, उसमें एक विशेष बात है, इसलिए वो वचनामृत देते हैं कि अज्ञानी जीव को पराधीन दृष्टि होने से शास्त्र में से भी वैसा ही आशय निकाल करके शास्त्र को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, परंतु शास्त्र में वैसा आशय है ही नहीं। ये बात बहुत समझने लायक है कि हम लोग शास्त्र को पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। पढ़ना एक बात है, पर उसमें से आशय के आशय अपने अभिप्राय अनुकूल निकालते हैं, जैसा अपना पूर्वग्रह है वैसा आशय पढ़ करके ऐसा आशय निकाल लेते हैं। उनको ऐसा ही लगता है कि जैसा मेरा अभिप्राय है वही कहना चाहते हैं, परंतु ऐसा शास्त्र में होता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि शास्त्र पढ़ने वाला एकदम मध्यस्थ होना चाहिए, जहां शास्त्रकार जो बात कहना चाहे वही समझे, अन्यथा नहीं समझे। लेकिन बहुभाग ऐसा होता है कि अपना जो पूर्वग्रह है उसी के अनुकूल शास्त्र का आशय बिठा देता है। पर अच्छे अच्छे बुद्धिमानों की यही गलती हो जाती है, आशय निकालने में गलत है परिस्थिति हो जाती है। कहने वाले का वजन कहां है और तदनुसार मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है उसकी नजर नहीं होने से जो पूर्वग्रह है उसी के अनुसार शास्त्रकार का वचन का आश्रय बिठा देते हैं। ये भूल बहुभाग होती है शास्त्र पढ़ने वालों को। आश्रय भेद है वो तो ज्ञानी अज्ञानी की वाणी की तुलना की बात हुई। यहाँ तो ज्ञानी की वाणी हो शास्त्र वचन हो ज्ञानी की वाणी है पढ़ता है आशय जो निकालता है उसमें गलती हो जाती है। पढ़ता है समझता भी है फिर यहां से आगे जो आशय निकालने की बात है वहां गलती हो जाती है। इसलिए सत्संग होना जरूरी है। सत्संग के बिना ऐसी भूल समझ में नहीं आती। तो उसी के अनुसार शास्त्रकार का आशय भी आत्म कल्याण कराने का है और हमारा अभिप्राय वही है तो दो बात बराबर यथार्थ होगी। खास करके जो पूर्वग्रह है वो तकलीफ देता है। तकलीफ की बात कहाँ है पूर्वग्रह में होती है। पहला कुछ समझ रखा है उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई हो मध्यस्थता नहीं आई हो तो ये गलती होती है। वरना सामान्य तौर से तो शास्त्र पढ़ने वाले को आप पूछो कि आप शास्त्र क्यों पढ़ते हो तो हमारा आत्मकल्याण हो गए इसलिए। शास्त्र साध्याय करने वाले को पूछो कि हमारा आत्म तो बोलेगा वो तो आत्मकल्याण का तो हमारा भाव है अभी हमारी इच्छा तो आत्मकल्याण की है इसलिए ये प्रवृत्ति जो भी प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति तो वही इसलिए करते हैं। धर्म साधन करने में हमको दूसरी तो कोई बात नहीं है फिर भी गलती होती है आशय निकालने में ये पूर्वग्रह के कारण से होती है। जैसे वो पत्रायन ने श्रुत धर्म मन दृढ़ रहे ज्ञान क्षेपक अवंतरे तो सत्पुरुष से सुना हुआ उपदेश उस उपदेश के प्रति प्रीति होती है तो उपदेश तो वचन रूप है वचन के प्रति प्रीति होती है तो वचन के कहने वाले के प्रति प्रीति नहीं हो वो बात तो बनी नहीं सकती। लेकिन वहां वो बात स्पष्ट नहीं कही स्पष्ट लिखी नहीं है तो यहाँ सत्पुरुष की बात गौण है सत्पुरुष के वचन की बात मुख्य है ऐसा कोई आशय निकाले तो ऐसा बन जाता है ऐसा बन जाता है। इसका कारण पूर्वग्रह में सत्पुरुष की प्रत्यक्षता का महत्व क्या है प्रत्यक्ष हो तो आत्मकल्याण का जो रहस्य है वो कैसे मिलता है वो बात समझ में नहीं आई तो ऐसा आशय दूसरा निकल जाता है उसमें। ऐसा बन जाता है इसलिए शास्त्र पढ़ना एक बात है और उसमें से सही यथार्थ आशय निकालना वो दूसरी बात है एकदम। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। इस कारण से सत्संग बहुत आवश्यक है कि कहीं आशय फर्क नहीं हो जाए। समझते 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 आशय फर्क नहीं हो जाए, क्योंकि निचोड़ तो लाएगा ना, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा वैसे उस पढ़ाई का निचोड़ तो लाएगा। वो यथार्थ कहाँ तक है वो बिना सत्संग समझ में नहीं आता है। ये बात बहुत अच्छा लिया है, पराधीन दृष्टि होने से या कोई पूर्वग्रह होने से शास्त्र में से भी ऐसा ही आशय निकाल करके शास्त्र को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, परंतु शास्त्र में ऐसा आशय है ही नहीं। गुरुगम बिना देखो फिर और बात लिया है, स्वच्छंद से वह जीव शास्त्र का उल्टा अर्थ करता है, इसलिए शास्त्र भी गुरुगम बिना नहीं पढ़ना, गुरु के चरण में बैठकर के शास्त्र पढ़ना। गुरुगम बिना शास्त्र पढ़े तो उल्टा अर्थ हो जाएगा और लाभ के जगह नुकसान हो जाएगा।
पहले ऐसा ही हुआ अर्थ का चला।
हाँ बहुत चला, बहुत चला। ये थोड़ा समझने जैसी बात थी। एक सौ चालीस दूसरा देख लेता हूँ। बारह अंग का ज्ञान पूर्व में कभी हुआ नहीं, क्योंकि बारह अंग का ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को होता नहीं। फिर भी बारह अंग का ज्ञान हो जाए ऐसा उघाड़ सूक्ष्म का हो जाए तो भी विस्मयकारी नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। ठीक, बारह अंग का ज्ञान का कोई आश्चर्य नहीं करना, यहाँ तो किसी का दूसरे का कोई थोड़ा भी उघाड़ देखता है तो लगता है कि हाँ बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। फिर भी वो विस्मयकारी नहीं है, परंतु उसमें कहा हुआ भगवान आत्मा यही विस्मयकारी है। बारंग में जो भगवान आत्मा की बात कही है वो विस्मयकारी पदार्थ है, चमत्कारिक पदार्थ तो वो है कि जिसका लक्ष्य होने से पूरा भवन फिर जाता है। कोई पागल होता है ना तो बोलता है कि इसका भवन फिर गया है, भवन मैंने परिणमन। ऐसे आत्मा ऐसा विस्मयकारी है कि लक्ष्य में आते ही भवन फिर जाता है, और ऐसा भवन फिर जाता है तो लोग कुछ भी कहे तो वो लोग का सुनता नहीं है। भगवान आत्मा विस्मयकारी है। जो ज्ञान में आत्मा कारण न हो वो ज्ञानी नहीं है। जिसमें आत्मा का को कारण से ज्ञान नहीं हो तो वो ज्ञान, उसको ज्ञान क्या कहे, वो ज्ञानी नहीं है। मैंने परके निमित्त से कारण से ज्ञान को माना वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञान है। यहां तो अभेद से आत्मा सो ज्ञान है ऐसा कहा, परंतु ऐसा कह करके फिर ऐसा कहा कि आत्मा उसमें कारण है, हेतु है, निमित्त है, परंतु ऐसा नहीं कहा कि आत्मा ज्ञान की पर्याय में आ गया है, आत्मा का ज्ञान पर्याय में आया है, आत्मा पर्याय में आया नहीं, क्या कहते हैं, पर्याय में ज्ञान का विषय आत्मा हुआ है, विषय विषय है, विषयी विषयी है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। ज्ञान सुई आत्मा ऐसा कह करके फिर वहां कोई बात है, दशम विचार 200। अच्छा निमित लिया है, ज्ञान में आत्मा निमित है, क्षणिक ज्ञान उपादान और त्रिकाली आत्मा उसमें ज्ञेय रूप निमित, ऐसा लिया है। उत्तर का था यहाँ द्रव्य पर्याय की भिन्नता दिखानी है, वहां द्रव्य पर्याय की अभिन्नता दिखानी है, इसलिए उल्टा सुलटा लगता है। हाँ, ज्ञान पर्याय लिए और वो त्रिकाल ले लिया, तो ज्ञान और अपना ज्ञान में एक स्वज्ञेय है, आत्मा है, सो स्वज्ञेय है। अभेद से आत्मा सोई ज्ञान ऐसा कहा, फिर भी ऐसा कहा कि आत्मा उसमें कारण है, हेतु है, निमित्त है, इसका मतलब क्या कि त्रिकाली त्रिकाली है, क्षणिक क्षणिक है। हाँ, अहीं तो अभेद थी आत्मा ते ज्ञान एम कहूं, पण एम कहीने पाछू एम कहूं એમ કે આત્મા તેમાં કારણ છે, હેતુ છે, નિમિત્ત છે, પરંતુ એમ કહ્યું નથી કે આત્મા જ્ઞાનની પર્યાયમાં આવી ગયો। જેવો આત્મા છે એવું આત્માનું જ્ઞાન પર્યાયમાં આવ્યું છે, પણ આત્મા આવ્યો નથી એમ કહેવું છે। આત્મા આત્માના સ્થાનમાં છે, જ્ઞાન જ્ઞાનના સ્થાનમાં છે, જ્ઞાનમાં આત્મા સ્વજ્ઞેય થયો, પણ જ્ઞેય જ્ઞેય છે ને જ્ઞાન જ્ઞાન છે એમ કહેવું છે। અંદરમાં અંદરમાં જ્ઞાન નહીં લીધું છે, હા, જ્ઞાન તે આત્મા એમ કહીને પણ બંનેને જુદા રાખ્યા। જ્ઞાન તે આત્મા એમ કહેવા માટે એમ એમ આત્મા બતાવવા માટે એમ ભલે કીધું, તો પણ આત્મા તે આત્મા છે ને જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે, એ પોતપોતાના સ્થાનમાં છે, જ્ઞેયના સ્થાનમાં છે, જ્ઞાન જ્ઞાનના સ્થાનમાં છે। એ તો આખા સમયસારમાં જ્ઞાન તે આત્મા, જ્ઞાન તે આત્મા એમ અભેદથી કહ્યું, અભેદથી કહ્યું છતાં ભેદ છે તે છે, ભેદ ભેદની અપેક્ષા ને અભેદની અપેક્ષા જેમ છે તેમ સમજવી જોઈએ એમ છે। જ્ઞાન નિર્ણયનો ભેદ રહે છે એની અંદર, ક્ષણિક ત્રિકાળી થાય નહીં, ત્રિકાળી ક્ષણિક થાય નહીં એમ કહેવું છે। હા, ક્ષણિક જ્ઞાન પર્યાય લીધે ને, જ્ઞાનની પર્યાયમાં એમ નથી કહ્યું કે આત્મા જ્ઞાનની પર્યાયમાં આવી ગયો, આત્માનું જ્ઞાન પર્યાયમાં આવ્યું છે, પણ આત્મા પર્યાયમાં આવ્યો નથી. નિતર આત્મા ક્ષણિક થઈ જાય, પર્યાયનો નાશ થતા આત્માનો નાશ થઈ જાય, એમ નથી બનતું. પર્યાયત્વ તે પર્યાયત્વ છે ને દ્રવ્યત્વ તે દ્રવ્યત્વ છે. હા છે ને, ચોખ્ખું લખ્યું છે ને કે આત્માનું જ્ઞાન પર્યાયમાં આવ્યું છે પણ આત્મા પર્યાયમાં આવ્યો નથી. એમ કેવું છે, જ્યાં જ્ઞાન તે આત્મા એમ કીધું છે ત્યાં ઓળખાવાનો હેતુ છે. 381 માં એ વાત લીધી છે, 382 માં કે આત્માને ઓળખાવા જ્ઞાન તે આત્મા, જ્ઞાન તે આત્મા એમ કહ્યું છે. ત્યાં હેતુ લીધો કે જ્ઞાન તે આત્મા એસા કહેને કે પીછેમાં પહેચાન કરાને કા પ્રયોજન હૈ, પહેચાન કરીને કરાને કા હેતુ હૈ. ક્યોંકિ જ્ઞાન યહ પ્રગટ અંશ હૈ ઓર આનંદ કા અંશ કોઈ પ્રગટ નહીં હૈ. ચારિત્ર ગુણ મેં તો રાગ હૈ ઓર સુખ કે જગ્યા દુઃખ પ્રગટ હૈ, ઇસલીએ કોઈ પ્રગટન સ્વભાવ કા પ્રગટન જ્ઞાન કે સિવા ઓર કોઈ ગુણ કે પર્યાય મેં નહીં હૈ. આનંદ કા અંશ કુછ પ્રગટ નહીં, પ્રગટ તો આકુલતા હૈ આનંદ કી જગે, આકુલતા તો પ્રગટ હૈ. ઇસલીએ જ્ઞાન કે પ્રગટ અંશ દ્વારા આત્મા કી પહેચાન કરાઈ હૈ. સ્વરૂપ નિશ્ચય કી બાત ચાલ રહી હૈ, સ્વરૂપ નિશ્ચય જ્ઞાન સે હી હોતા હૈ, બિના જ્ઞાન સ્વરૂપ નિશ્ચય હોતા નહીં હૈ. ક્યોંકિ દૂસરા તો પ્રગટ હી નહીં હૈ કોઈ અંશ, આનંદ કી જગ્યા આકુલતા હૈ ઓર વિતરાગતા કી જગ્યા રાગ હૈ ઓર દ્રષ્ટિ તો પૂરી મિથ્યા હૈ, મુમુક્ષુ કો ઉલટી દ્રષ્ટિ હૈ. એક જ્ઞાન કે અલાવા કોઈ સાધન નહીં હૈ. ઇસલીએ જ્ઞાન કે પ્રગટ અંશ દ્વારા આત્મા કો પહેચાન કરાઈ હૈ, યાને નિશ્ચય કરાયા હૈ. જ્ઞાન કે પ્રગટ અંશ કો અંદર મેં મોડે, અંદર મેં મોડે તો અખંડ હો જાય, પૂરા સખંડ અખંડ હો જાય, મેં દ્રવગુણ શુદ્ધ હૈ પર્યાય ભી શુદ્ધ હો જાય. જ્ઞાન કા અંશ અંદર મેં મૂડ જાય, દ્રવગુણ તો શુદ્ધ હૈ પર્યાય ભી શુદ્ધ હો જાયગી. પુરુષાર્થપૂર્વક વાત લેના હૈ, બિના પુરુષાર્થ દિશા બદલતી નહીં. અનાદિ સે જ્ઞાન કી દિશા પર સન્મુખ હૈ, વો બિના પુરુષાર્થ અંતર્મુખ હોતી નહીં હૈ. તો ઇસલી બોલા તો અંદરમાં વાળે, એમાં પુરુષાર્થ સાથે સાથે લેવો છે. વિચાર કા સ્ટેજ હૈ મુમુક્ષુ કો, વહાં તક તો પુરુષાર્થ કા પ્રયોગ નહીં હૈ. ક્યા હૈ કે જ્યાં તક વો વિચાર મેં રુકા હુઆ હૈ વહાં તક પુરુષાર્થ કા સ્ટેજ નહીં હૈ. લેકિન જબ પ્રયોગ મેં આતા હૈ તો પુરુષાર્થ હોતા હૈ ઓર પ્રયોગપૂર્વક પહેચાન હોતી હૈ, નિશ્ચય હોતા હૈ સ્વરૂપ કા. વો બિના પ્રયોગ કિસી કો નિશ્ચય હોતા નહીં હૈ. તો પ્રયોગ કે કાલ મેં પુરુષાર્થ ચાહીએ, બિના બલ प्रयोग नहीं हो सकेगा, बल को पुरुषार्थ को एक ही बात है। मुख्यतया तो उदय भाव ही है, विचार जहाँ तक चलता है उसमें मुख्य रूप से तो उदय भाव में ही जीव एकाकार है, उदय में चलता है अभी तक तो। उदय का अभाव तो चतुर्थ गुण स्थान के बिना ऐसे ही नहीं है, मुमुक्षु की भूमिका में तो पहला गुण स्थान में तो उदय ही उदय है, और क्या, उदय भाव की मुख्यता है। वो भी पुरुषार्थ है, उदय भाव के सामने या प्रकृति के उदय भाव के सामने लड़ना वो भी पुरुषार्थ है, वो भी पुरुषार्थ है। देखो आखिरी बात बहुत अच्छा किया है, आत्मा को ज्ञान के अंश से पहचान कराने का या निश्चय कराने का मूल हेतु तो यह है कि प्रगट अंश है, वो प्रगट अंश के आधार से अंशी का निश्चय, अंशी की पहचान करने जाएगा तो जो प्रगट अंश बाहर पर सम्मुख चल रहा है उसको अंदर मुक्त अंदर आना पड़ेगा। अंदर में वाड़े बिना वो निश्चय होता नहीं, किसका निश्चय करना है कि आत्मा का। आत्मा क्या है कि अंत तत्व स्वरूप है, कैसा है आत्मा, अंत तत्व स्वरूप है, तो उसको लक्ष्य में लेने के लिए उपयोग को अंदर में ले जाना पड़ेगा, तब पहचान होती है, तब स्वरूप निश्चय होता है, इसके पहले होता नहीं है। इसका मतलब यह है कि परलक्ष ज्ञान में भी निश्चय नहीं होता, और ज्ञान से पहचान करने का हेतु यही है कि अंतर्मुख यहां से किया जाता है, बहिर्मुख भी ज्ञान से होता है और अंतर्मुख भी ज्ञान से होता है। छह सौ साढ़े तीस में वो बात लिया है, क्योंकि नीचे तीन लिटी है, पानु 175, क्योंकि रागादि त्रिकालीय स्वरूप में नहीं रहते, एक समय मात्र अवस्था में रहकर के वो नाश हो जाता है, इसलिए वो स्वलक्षण हो सकता है नहीं। अनंत धर्म में मुख्य ज्ञान है, आत्मा के अनंत धर्म में मुख्य ज्ञान है, और पराश्रय बुद्धि छूट करके अंतर्मुख होने में ज्ञान ही कारण है। देखो बहिर्मुख होने में भी ज्ञान कारण है और अंतर्मुख होने में भी ज्ञान कारण है, बहिर्मुख होने में दूसरा कारण है और अंतर्मुख होने में ज्ञान कारण, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उपयोग खुद ही बाहर ले जाता है, वही उपयोग खुद ही अंदर में लाएगा, तो ज्ञान ही कारण है और कोई कारण। स्वपर प्रकाशक होने से, स्वपर वजन नहीं है तो बह जाएगा, पर प्रकाशक के काल में परग्नि में बह जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा, तो बहिर्मुख होगा, तो बहिर्मुख होने में भी ज्ञान कारण है क्योंकि पर प्रकाशक बना है, और अंतर्मुख होने में भी ज्ञानी कारण है। स्वरूप निश्चय के कितने वचनामृत है मालूम है, लिखना हो तो कोई लिख लो, 22 नंबर का है, फिर 382 हमने पढ़ा, फिर 851 तो आखिर का है, फिर है 637, 38, 39 तीनों, 708, 710 और 851, इतने वचनामृत एक ही सब्जेक्ट मैंने स्वरूप के निश्चय पर है। स्वरूप निश्चय का गुरुदेव के वचनों से जिसको अभ्यास करना हो उनको इतने वचनामृत। हाँ क्यों नहीं, 22 नंबर पहला और फिर आएगा 382, फिर 637, 38, 39 तीनों एक साथ, फिर 708, 710 और आखिर में 851। उसमें भी 851 में भी वही बात भी आए। वर्तमान ज्ञान दर्शन वीर्य का अंकुर है, वही त्रिकाली का अंश है। यह अंश द्वारा त्रिकाली आत्म तत्व का निर्णय होता है। जैसे आम के पेड़ में दो पत्ता जमीन के बाहर दिखने में आए तो नक्की होता है कि अंदर में बीज है।